ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल जारी किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में जाने के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चरण एक फिर से लागू किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पॉड होटल शुरू किया और NDMC अपने क्षेत्र के निवासियों और सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए शनिवार को शिकायत निवारण शिविर आयोजित करेगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इन समितियों में लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और प्राक्कलन समिति शामिल है। भाजपा विधायक अजय महावर को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, गजेंद्र दराल को सरकारी उपक्रमों की समिति का अध्यक्ष और हरीश खुराना को अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बजट सत्र के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी दी। श्री गुप्ता ने बताया कि बजट सत्र के दौरान सदन की कुल 7 बैठकें हुई, जिनमें 27 घंटे 56 मिनट तक कार्यवाही चली। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने 1,00,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट भी पेश किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 40 दिन की अवधि में 2 सत्र हुए और सदन की कार्यवाही एक दिन भी रोकी नहीं गई।
विपक्ष के नॉन कॉपरेशन के बाद सदन की कार्यवाही एक दिन भी विघ्न के कारण रोकी नहीं गई और सभी कार्य उस दिन के पूरे किए। इसके साथ साथ बजट जब पारित किया गया तो वो लॉन्गेस्ट सिटिंग थी 8 घंटे की।
श्री गुप्ता ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में पूरे 5 साल में सदन मात्र 4 बार ही चल पाया था। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज वजीराबाद स्थित जल उपचार संयंत्र का दौरा किया। इस अवसर पर श्री वर्मा ने जल उपचार संयंत्र का पानी पीकर उसकी गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पानी एकदम साफ है।
मैं देखने आया था कि दिल्ली के लोग कैसा पानी पी रहे हैं, हमारे प्लांट कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। पानी एकदम साफ था, क्लीन था, कोई स्मेल नहीं थी और हमने देखा TDS भी अपने पैरामीटर्स में था। ऐसे ही हमारे जितने भी WTP चल रहे हैं सबकी क्वालिटी को चेक करेंगे कि दिल्ली के लोगों को अच्छा साफ पानी पीने को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है।
श्री वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता शहरवासियों को साफ पानी उपलब्ध कराना है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के बिजली कटौती के आरोपों का खंडन किया है। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर सुश्री आतिशी बार बार गलत बयानबाजी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम के लिए दिल्ली सरकार कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पिछले 10 सालों में औसतन प्रतिदिन 14 बार बिजली कटौती की गई।
कहते हैं हमारे समय में बत्ती बंद नहीं हुई थी, तो आपके माध्यम से पूछिए तो इसका मतलब 10 साल में एक दिन भी बिजली के नेटवर्क को ऑगमेंट करने के लिए काम नहीं किया गया। अगर वो कहते हैं उनके समय में एक दिन भी बत्ती बंद नहीं हुई, एक मिनट भी बत्ती बंद नहीं हुई, कभी बत्ती जाती नहीं थी, तो इसका मतलब 10 साल तार ठीक करने के लिए, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए, ट्रांसफार्मर का तेल डालने के लिए कभी बिजली बंद नहीं हुई।
वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी ने कहा कि सरकार के दस्तावेजों में स्पष्ट है कि दिल्ली में पावर कट सिस्टम की विफलता है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शहर में बिजली कटौती पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भाजपा की दिल्ली सरकार भी बिजली कंपनियों पर नियंत्रण रखने में नाकाम साबित हो रही है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल जारी किया। जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल कई गणना योजनाओं में सहायता करते हैं। इन योजनाओं में सातवीं लघु सिंचाई गणना, जल निकायों की दूसरी गणना, झरनों की पहली गणना और प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहली गणना शामिल हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि जल संसाधन गणना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता, जल बजट आदि सहित प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए एक व्यापक और विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्षेत्र के वायु गुणवत्ता सूचकांक के खराब श्रेणी में जाने के बाद तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के चरण एक को फिर से लागू कर दिया है। एक रिपोर्ट।
ग्रेप के चरण एक के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 से 300 के बीच होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा 27 निवारक कार्रवाइयों को सख्ती से लागू किया जाना है। एनसीआर राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को चरण एक उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच ग्रेप पर उपसमिति ने नागरिकों से सहयोग करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए नागरिक चार्टर निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। अधिकारी वायु गुणवत्ता के स्तर की निगरानी करना जारी रखेंगे और क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यकता अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। लोकसभा ने कल रात विधेयक पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। इसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं। इससे संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित हो सकेगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हितधारकों के साथ साथ संयुक्त संसदीय समिति के साथ विस्तृत परामर्श के बाद विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को समावेशी बनाने के लिए इसमें मुसलमानों के सभी संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा।
हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भरपूर इसमें प्रावधान किया गया है। अब सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा जो सारा स्टेट बोर्ड के साथ में लिंक होगा, लाइव होगा। वक्फ प्रॉपर्टी का कंटिन्यूअसली रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग कंप्लायंस पूरा व्यवस्था करके हमने एफिशिएंसी को टारगेट दिया है।
कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि ये विधेयक भ्रामक है और इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इरादे से लाया गया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य मनोज झा ने बिल लाने के पीछे सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा किया।
देश का माहौल कैसा है इस पे एक नजर डाला जाए। गाहे बगाहे इकोनॉमिक बायकॉट की बात होती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सवाल उठता है। सर, इस तरह के माहौल में आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है।
लोकसभा ने तटीय नौवहन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारतीय समुद्री सीमा के भीतर व्यापार में लगे जहाजों को विनियमित करना है। विधेयक में तटीय जल का अर्थ है भारत का प्रादेशिक और आसपास के समुद्री क्षेत्रों का जल। विधेयक में तटीय नौवहन के विनियमन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने, तटीय व्यापार को बढ़ावा देने और घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए अभियानों को हरी झंडी दिखाई। पर्वतारोहियों से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने उनके साहस, समर्पण और दृढ़ संकल्प की सराहना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने यात्रियों की सुविधा के लिए राजधानी के नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पॉड होटल शुरू किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले यात्रियों के ठहरने की सुविधा देने के उद्देश्य से DMRC ने ये होटल विशेष रूप से बनाया है।
राजधानी के सबसे व्यस्त रेलवे और मेट्रो स्टेशन के पास बने इस पॉड होटल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 70 लोगों के ठहरने की क्षमता वाले इस होटल में यात्री आराम करने के साथ साथ खेल, कार्य करने की जगह और मिनी थिएटर जैसी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। DMRC के मुताबिक यात्री इस होटल में 400 रूपए में 6 घंटे ठहर सकते हैं, वहीं सामान्य दिनों में दिन भर के लिए इसे 600 रूपए में बुक किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम के मुख्य कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया है कि मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को ठहरने की सुविधा के लिए यह होटल शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि देश विदेश से राजधानी दिल्ली आने वाले यात्री इस होटल का लाभ उठा सकते हैं।
अभी हमारा जो लेटेस्ट एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है पॉड होटल्स का, यानी कि ओवरनाइट स्टे के लिए अकोमोडेशन अवेलेबल रहेगा। ये इसलिए किया गया है, एक तो हमारे पैसेंजर्स को कन्वीनियंस होगी और दूसरा DMRC कोई ना कोई अटेम्प्ट करते रहता है इम्प्रूवमेंट होते रहे हमारे फैसिलिटीज में जो हम पैसेंजर्स को ऑफर करें। ये जो लोकेशन हमने चुना है वो स्टार्ट करने के लिए वो नई दिल्ली स्टेशन है। एक तो नई दिल्ली स्टेशन काफी क्राउड रहता है वहाँ पे और लोग दिल्ली से बाहर भी आते हैं और उनको अकोमोडेशन की जरूरत पड़ती है, और फिर जो हमारा एयरपोर्ट लाइन की जो कनेक्टिविटी है वो भी स्टेशन से अवेलेबल रहेगी।
24 घंटे ठहरने की सुविधा वाले इस होटल में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग सेक्शन हैं, जहां यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया है। इस होटल की बुकिंग प्रमुख पर्यटन कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर की जा सकती है। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान के साथ अक्षित वैद्यान।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC अपने क्षेत्र के निवासियों और सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए शनिवार को शिकायत निवारण शिविर आयोजित करेगी। इस शिविर में बिजली कनेक्शन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जल भराव, स्वच्छता, सड़क मरम्मत, पेंशन योजनाएं और अन्य सरकारी सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाएगा। ये शिविर NDMC द्वारा हर महीने के पहले शनिवार को आयोजित किया जाएगा। शिविर सुबह 10:30 दोपहर 12:30 तक नई दिल्ली के NDCC कनेक्शन सेंटर में आयोजित होगा। दिल्ली नगर निगम द्वारा राजधानी दिल्ली के सलीमगढ़ किले के पास रात्रि भोजन बाजार विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पुरानी दिल्ली की पाक कला और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने के साथ साथ शहर में अतिक्रमण को रोकना है। निगम ने बताया कि पहले चरण में प्रमाण पत्र प्राप्त 50 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को इस बाजार में अपने व्यंजनों को बेचने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली पुलिस की एंटी स्नैचिंग शाखा की टीम ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी पिछले 3 महीनों से राजधानी के महिपालपुर में अवैध रूप से रह रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी बांग्लादेश के सुन्नामगंज का निवासी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को विदेशी पंजीकरण कार्यालय में सभी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद निर्वासन केंद्र भेज दिया गया है। राजधानी में आज दिन में तेज धूप खिली रही। आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल जारी किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में जाने के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चरण एक फिर से लागू किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पॉड होटल शुरू किया और NDMC अपने क्षेत्र के निवासियों और सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए शनिवार को शिकायत निवारण शिविर आयोजित करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।